سورہ یوسف آیت نمبر 35 تک. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں بڑھے دروازے کی طرف. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، اور اس عورت نے پھاڑ دیا اس کی قمیض کو. مِنْ دُبُرِ، پیچھے سے. اب کیا ہوا، جب یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور وہ ظاہر ہے یہ اس کام میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، تو وہ بھاگے وہاں سے. اور یہیں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب کوئی گناہ کی جگہ ہوتی ہے اور انسان کو یہ خطرہ ہو کہ میں یہاں پہ، یہ نہ ہو کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ وہاں سے نکل جانا چاہیے، یعنی کہ بیٹھے بھی رہیں اور کہتے رہیں کہ اچھا اب کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں. کیوں آپ اٹھ کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو وہ چلے نہیں گئے، وہ بھاگے. اس سے پتا چلتا ہے ان کا گناہ سے خود کو بچانے کے لیے جو ایفرٹ ہے ان کی، کہ کہیں میں اس میں نہ پڑ جاؤں. اب آپ دیکھیں نا، انبیاء کی عصمت کو سمجھیں کہ کیسے وہ سبحان اللہ ایسے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے، اللہ تعالیٰ کسی ایسے ہی نہیں چن لیتا. کیسے ان کی تڑپ تھی اس چیز کی کہ میں نے گناہ میں نہیں پڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج اتنا قریب ہوگا، اس دن لوگ کس طرح تڑپ رہے ہوں گے گرمی میں، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. ایک وہ جو مسلمان عادل بادشاہ ہے، دوسرا وہ جوان مرد اور عورت، لڑکی لڑکا جوان، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. جوانی میں تو ہم سوچتے ہیں ابھی تو فن ٹائم ہے، اب بڑھاپے میں جا کے کریں گے توبہ، تب نیک ہو جائیں گے، ابھی تو میری جوانی ہے. جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی. نمبر تھری وہ جو جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جب مسجد سے نکلے مسجد کی دھن میں رہے. نمبر فور وہ دو لوگ جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی پہ جمع ہوتے ہیں، اسی پہ جدا ہوتے ہیں. نمبر فائیو وہ جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس کو چھپا کے دیتا ہے، ایسے کہ دائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں کو خبر نہیں ہوتی. نمبر سکس وہ جس کو کوئی جاہ اور منصب والی، حسن و جمال والی عورت اپنی طرف برائی کے لیے بلائے اور وہ کہہ دے مجھے اللہ سے ڈر لگتا. نمبر سیون وہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے. تنہائی میں ہے نا، کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کا مطلب یہ آنسو بھی خالص ہیں، ان آنسوؤں میں کوئی فریب نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریا نہیں، اکیلا ہے وہ. اور اس کو اللہ یاد آ گیا، اپنے گناہ یاد آ گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یاد آ گیا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. تو اس میں ہے وہ شخص انکلوڈڈ جس کو کوئی حسن و جمال والی ایسی خوبصورت عورت اپنی طرف بلائے تو وہ کہے کہ کسی کو کون سا کچھ پتا چلنا ہے، تو کوئی بات نہیں. ٹیکسٹنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس میں تو کچھ زیادہ نہیں ہے، اور اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے کہاں تک بات چلی جاتی. جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، جو گناہوں سے خود کو بچانا چاہتے ہیں، وہ سو میں بھی نہیں پڑتے، چھوٹے گناہ میں بھی نہیں پڑتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، وہ راستہ جو آگے زنا تک لے جاتا ہے وہاں قدم نہ رکھنا. یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرنا، قریب بھی نہ جانا، دور سے ہی اس کو خدا حافظ. تو انہوں نے وہاں سے فرار حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائی. اب سمجھ آئی کہ گناہ سے بچنے کے لیے کتنی ایفرٹ کی ہے؟ میں اور آپ بتائیں کہ ہم گناہ سے بچنے کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، کتنا اس چیز کو سوچتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ نہیں بیٹھنا اس لیے کہ یہاں پہ میں گناہ سے کہ میں پڑھ سکتی ہوں، یہاں پہ کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ میں کوئی غلطی کر سکتی ہوں. شاید ہم کانفیڈنٹ بہت ہوتے ہیں اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا،
हमें लगता है कि हम बस हम कैसे गुनाह करें, हम तो बड़े नेक और पारसा हैं, हम तो कभी गुनाह में नहीं पड़ सकते। लेकिन देखिए आपकी, यहां से हमने ये सीखा कि जहां गुनाह में पड़ने का खतरा हो वहां से हमने दौड़ लगानी है, हमने वहां पे नहीं रहना है। अच्छा अब देखें, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दौड़ लगाई तो पीछे वो औरत भी भागी, मतलब उसके अंदर इतनी जुर्रत थी कि वो बजाय इस बात पे शर्मिंदा हो जाती कि इसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने भी पीछे दौड़ लगाई। देखिए दो अल्फाज से ही पता चल गया ना कि वहां सिचुएशन क्या थी, कि दोनों भागे, एक किस लिए भाग रहा है, शर की तरफ बुलाने के लिए, और एक किस लिए भाग रहा है, शर से दूर जाने के लिए। एक जिद पे है कि मैंने गुनाह करके रहना है, और एक है जो अल्लाह की पनाह ले चुका है। अब आप खुद सोचें आगे, क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पता कि दरवाजे तो इसने लॉक किए हैं, फिर क्यों फरार हो रहे हैं, आराम से बैठ जाएं भाई, दरवाजा तो वैसे ही लॉक है तो मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, इसमें इतना बड़ा लेसन है कि देखें, चाहे आपको पता है कि कोई रास्ता नहीं है बचने का गुनाह से, तब भी कोशिश करनी है। कोशिश की थी ना, एक दौड़ लगाई थी बीबी हाजरा ने भी, क्या एक दफा नहीं पता चल गया था कि पानी नहीं है इर्द गिर्द, क्यों साफ चक्कर लगाए, कोशिश कोशिश कोशिश, एक दफा नहीं, दो दफा, तीन दफा, अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को देखता है, ये कितनी कोशिश कर रहा है, इसको पता है कि नहीं है कोई निकलने का रास्ता, फिर भी वो कोशिश कर रहा है, फिर भी वो भागे, क्योंकि हमारा काम कोशिश करना है, बचाना अल्लाह का काम है। हम कहें हम क्या कर सकते हैं, हम तो जा ही नहीं सकते, हमें तो वो बुरा मानेगा, वो ऐसे करेगा, इससे मतलब हमारी अपनी कोशिशों में कमी होती है ना, हम निकलना ही नहीं चाहते ऐसी जगहों से, ऐसे ऐसे रास्तों को छोड़ना ही नहीं चाहते। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे हैं और आगे दरवाजे बंद हैं, वो औरत भी पीछे भागी है, उसने वो जानती थी कि दरवाजा बंद है, वो भी अपने तौर पे कोशिश कर रही है। इसको ना आप सब चीजों में लगा सकते हैं, आप ये देख लें कि आपको अगर ये कि देखें मैं क्या कर सकती हूं, मेरे तो फलां नहीं मानते, फलां नहीं मानते, मेरे बॉस नहीं मानते, हस्बैंड नहीं मानते, बच्चे नहीं मानते, आपकी कोशिश कितनी है गुनाह से बचने की, आप कितना अपने तौर पे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ताकत खर्च कर दी, वस्तबकल बाब, पूरी ताकत के साथ दौड़े हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए, औरत भी जब दौड़ी है तो उसने पीछे से जो पकड़ा, और यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर चाहे पीछे से पकड़ा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम रुक जाते तो तब भी ना कुर्ता फटता, मगर वकद्दत कमीसा हु बता रहा है ये बात कि यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे को जोर लगा रहे हैं और वो पीछे को जोर लगा रही है, वो अपनी तरफ खींच रही है और यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़ रहे हैं, कितना पक्का इरादा था। इससे ही पता, एक बात तफासीर में लिखी है कि एक बुजुर्ग आलिम थे, वो जेल में थे, जेल में कैद थे, तो जुमे के दिन अपनी कुदरत के मुताबिक गुसल करते, अपने कपड़े धोते, फिर जुमे के लिए तैयार होके जेल खाने के दरवाजे तक जाते थे, वहां पहुंच के कहते थे या अल्लाह मेरी कुदरत में बस इतना ही था, आगे आ तेरा इख्तियार है, ठीक है ना। और दरवाजा तो जाहिर है जेल का नहीं खुलता था, मगर वो अपनी कोशिश, अपनी हिम्मत, अपनी जहां तक उनकी लास्ट, जहां तक लास्ट स्टेप वो ले सकते थे, हर जुमे को वो ये अमल करते थे, समझ आई बात। तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, पूरी कोशिश कर ली कि वो पीछे से कुर्ता पकड़ रही है, वो फिर भी रुक नहीं रहे, फिर भी वो आगे को भागते, और उसकी भी ग्रिप कितनी मजबूत है कि कुर्ता फट गया,
ना उसने छोड़ा ना इन्होंने जोर लगाना छोड़ा। और इस किस्म की स्ट्रगल हम रोजाना करते हैं एक अनदेखे दुश्मन के साथ जो शैतान है, वो हमें अपनी तरफ खींचता है। हम भी अगर जोर लगा के खुद को उससे नहीं छुड़ाएंगे तो हम भी गुनाह में पड़ जाएंगे। अब जिसका जोर ज्यादा होगा जीत उसी की होगी। शैतान तो पीछे नहीं हटता, वो तो खींचता ही जाता है। मुझे और आपको इतना जोर लगाना होता है कि हम अपने आप को उसके चुंगल से आजाद कर लें। तो इस कश्मकश, ये खैर और शर की जो कश्मकश है, इसमें रोजाना हर इंसान पड़ता है। और यहां पर तो अपने सामने देख रहे थे एक हसीन औरत, एक तैयार औरत, खुशबुओं में लिपटी हुई औरत, हालात मुआफिक सब कुछ, यहां तो और मुश्किल था। अब वो दरवाजे के पास पहुंच गए कि क्या हुआ, वह अल्फा या सईदहा लदल बाब, एकदम सामने क्या हुआ, दरवाजा खुला और उसका शौहर सामने खड़ा हुआ था। अनएक्सपेक्टेड, उसने कभी सोचा नहीं था कि इस टाइम पे वो आ सकता है। और यहां पे इंटरेस्टिंग बात है कि जौजहा नहीं कहा गया, सय्यदहा, सय्यदा वो कहा जाता, फिर भी समझ आती थी कि उनका मालिक जो आका यूसुफ अलैहिस्सलाम का, लेकिन सय्यदहा की जमीर मुअन्नस की होती है, सैयद तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का था क्योंकि उनका आका था ना, और हा की जमीर आई जो मुअन्नस की है। तो औरत का आका ये शौहर नहीं कहा गया, औरत का सरदार, तो इसमें बड़ा एक गहरा नुक्ता है। औरत ने अपने सैयद को पाया, ये इशारा इस तरफ है कि बावजूद ये कि वो आदमी इसका आका था, जिसका इकराम इस औरत को करना चाहिए था, जिसकी इज्जत का पास इसको रखना चाहिए था, क्योंकि वो सरदार था इसका, उल्टा इसने क्या किया, उसी की इज्जत को दागदार कर दिया। तो इसमें इशारों में समझाया जा रहा है, और ये लफ्ज समझा रहा है कि इस औरत ने कितना बुरा अमल किया कि अपने ही सैयद की इज्जत को तार तार किया, अपने ही शौहर के साथ ऐसा किया, उसकी इज्जत में खयानत की, जबकि इसके जिम्मे तो ये था कि अपने शौहर के घर, उसके माल, उसकी इज्जत की हिफाजत करे जब वो घर पे ना हो। तो औरत जब अपनी इज्जत की हिफाजत करती तो अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करती। हदीस आपको पता होगा, वो औरत जो नमाजें कायम करती है 5 वक्त की, और माहे रमजान के रोजे रखती है, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है। क्या होती है शर्मगाह की हिफाजत? ये नहीं सिर्फ है कि जिना नहीं करती, फ्लर्ट नहीं करती, किसी से छुपी दोस्तियां नहीं करती, ताल्लुकात नहीं रखती, अपने खाविंद की इज्जत की हिफाजत करती है और अपने खाविंद की इताअत करती है। तो इससे कहा जाएगा जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। कितने इजी है औरतों के लिए, कितना इजी है कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। और बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं, कुरान सीख भी रही हैं, इस क्लास में भी हैं, अच्छी इबादत भी करती हैं, पढ़ती भी अच्छा है, मगर खामंदों को सताती हैं, उनसे बदतमीजियां करती हैं, सबके साथ अच्छी हैं, खामंद के साथ बात करते वैसे बात करती हैं जैसे नौकर से बात कर रहे हैं। तो फिर हम क्या सीख रहे हैं? बहुत से आदमी हैं जो मुझे ईमेल भी करते हैं, या कहीं ना कहीं से मैसेज सेंड कराते हैं, किसी ना किसी के थ्रू मुझ तक पहुंचते हैं कि आप इनको क्या पढ़ा रही हैं, ये तो इस तरह का सलूक करती हैं घर में। और यकीन करें मेरा खुद सर शर्म से झुक जाता है, ये मेरे स्टूडेंट्स होके ऐसा करती हैं, जबकि मैं तो आपको समझाती रहती हूं, आप सब मेरे बच्चों की तरह हैं। जैसे खुदा ना खासा मेरे बच्चों की शिकायत कोई मुझ तक लेकर आए तो मुझे शर्मिंदगी होगी ना, इसी तरह आपकी भी कोई शिकायत मुझ तक लेकर आता है तो मुझे इसी तरह लगता है, चाहे मैं पर्सनली आपको नहीं भी जानती। मगर जब कोई कहता है आपकी स्टूडेंट वो है मेरी बीवी और वो घर में ऐसा ऐसा करती है, तो खुद तो आप गुनाहगार होती हैं, साथ मुझे भी शर्मिंदा करती हैं। अब कुरान में देख लें, यहां शौहर को सय्यद कहा गया, दूसरी जगह हम पढ़ चुके हैं कवाम कहा गया। तो अल्लाह ताला ने ये दर्जा आदमी को दिया है, अल्लाह ताला के दिए हुए मकाम को हम अपने पैरों तले रोंदे, उसकी इज्जत भी ना करें, इतनी भी इज्जत ना दें जितनी अपने दोस्तों को देती, उनसे जैसे नरमी और हंस हंस के बात करते हैं, सोचें अल्लाह के दिए हुए दर्जे को हम इतनी भी अहमियत नहीं देते। ये पास है हमें अल्लाह की बात का, क्योंकि हदीस में है फसौलेहातु कौन, नहीं कुरान में है फसौलेहातु कौन इता, तुम फरमा बरदार होते हैं, हाफिजात लिल गैब, और इताअत, इताअत हदीस में आता है, देखें इस हदीस में जो मैंने आपको सुनाई है, आज इताअत तो दूर की बात है, अगर नौकर जैसा सलूक करना है हस्बैंड के साथ तो ये क्या सीखा हमने। सब ऐसे नहीं है, मगर जो करते हैं वो उनको खुद समझ जाना चाहिए, इंसान अपना हिसाब लेने के लिए खुद काफी है, आज हिसाब नहीं लेंगे तो कल को अल्लाह ताला के सामने तो हिसाब देना होगा। आज तो शायद कोई हमें घर में आके देखे भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता होगा कि किस तरह से हम बात करते हैं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो कोई नहीं देख रहा था, अल्लाह देख रहा था। और यही तकवा है कि अल्लाह ताला की नजरों का एहसास हो कि मैं ये जो कर रही हूं सही नहीं कर रही। किस तरह जवाब देंगे इस बात का कयामत के दिन, शौहर के मकाम मामूली नहीं है, चाहे वो बाहर दुनिया में कोई मामूली आदमी हो, उसका कोई दर्जा भी ना हो, मगर जब वो शौहर बन गया किसी का तो उस औरत के ऊपर उसका बड़ा मकाम है, उसकी बात को मानना जरूरी है, अनलेस कि वो कोई सी ऐसी बात का हुक्म देता है जो कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की हो, तब नहीं मानेंगे। तो उन दोनों ने पाया उसके शौहर को दरवाजे के पास, अब बजाय इसके कि वो औरत शर्मिंदा हो जाती, उसने क्या किया, कालत, उसने फौरन ढिटाई से कहने लगी, मा जजाउ मन अरादा बि अहलिका, क्या बदला है उस बंदे का जो इरादा करे आपकी घरवाली के साथ, किस चीज का, सुअन, बुराई का, इल्ला मगर अयुस जना औ अजाबुन अलीम, इल्ला ये सिवाय इसके और क्या बदला हो सकता है ऐसे आदमी का जो आपकी बीवी के साथ बुराई का इरादा करके, उसको तो जेल होनी चाहिए या उसको दर्दनाक अजाब टॉर्चर होना चाहिए। यानी उल्टा चोर को तुवाल को डांटे वाली बात, के खुद ही करके और दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल दिया, और इसी से पता चलता है कि उसकी कोई मोहब्बत ऐसी सच्ची मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि जहां पे इंसान को सच्ची मोहब्बत हो ना किसी के साथ तो वो अपने महबूब की कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये कह रही है कि उसको जेल में डाला जाए। अब इसके अंदर उसने अपने ऊपर से कसूर तो उतारना था ही, वो भी मकसद था, और अपना गुस्सा भी इसमें शामिल था, दर्दनाक अजाब इसको दिया जाए कि इसने मुझे नो क्यों किया, उसको खुद गैरत आई। और ये भी उसने कहा जिसने इरादा किया तेरे घर वाले के साथ, ये नहीं कहा जिसने कर लिया तेरे घर वाले के साथ कोई बुरा, इसलिए कि अगर ये कहती तो फिर तो खुद के ऊपर भी आना था कि मैंने मेरे साथ किसी ने ऐसा कर लिया। तो आप देखें एक मासूम के ऊपर तोहमत लगाना, जैसे कि आपको पता होगा कि 7 कबीरा गुना जो हलाक कर देने वाले गुना है, उनमें एक गुना है भोली भाली मासूम औरत पे तोहमत लगाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आदमियों के ऊपर कोई तोहमत लगाते भी जाए तो कोई मसला नहीं, ये नहीं मतलब है, वो भी गुनाह है, औरत के ऊपर कबीरा गुनाह इसलिए कहा गया कि औरत का एक दफा उसके ऊपर कुछ इल्जाम लग जाए ना तो उसकी सारी जिंदगी खत्म होके रह जाती है और उसको कोई चारा नहीं होता किस तरह से अपने ऊपर से इल्जाम को धोए। आयशा रजी अल्लाह तआला की मिसाल आप देख लें कैसे उनके ऊपर तोहमत लगाई गई थी और कितनी उनके लिए एक बेबसी का आलम था। तो चाहे औरत पे तोहमत लगाना या मर्द पे तोहमत लगाना गुनाह का काम है। हमारे यहाँ किसी भी लड़की पे वो रिश्तेदारों में हो मोहल्ले में हो इर्द गिर्द हो हमारी नजरों में आ जाए सही बड़े आराम से उसके ऊपर कोई भी बात लगा देते हैं जी ये फलां लड़के के साथ इन्वॉल्व है इसका तो चक्कर है फलां के साथ और ये कह के खुद आराम से घर जाके बैठ जाते हैं। ये नहीं हम सोचते कि ये कितना बड़ा हलाक कर देने वाला गुनाह है। तो किसी के भी कैरेक्टर के बारे में जुबान खोलने से पहले इंसान 100 दफा नहीं हजारों दफा सोचे और तभी कहे जब कोई वाकई आपको बड़ी कोई गवाही देनी है वरना जरूरत क्या है। तो किसी मर्द पे भी बेकसूर है कोई आपके पास उसका सबूत नहीं कोई कुछ नहीं उसके ऊपर इल्जाम लगा देना जैसे यहां पे इसने तोहमत लगाई है ये वो चीज है जो किसी की रेपुटेशन को तबाह करके रख देने वाली है। तो यहां पे इस औरत ने कह दिया कि इसने मेरे साथ गुनाह का इरादा किया और आज देखें आप फिर अगेन सियासतदानों की बात आ जाती है या फिर और जो लोग बहुत पॉपुलर होते हैं आप देखते हैं खासतौर पे इस मुल्क में तो अक्सर वो कोई औरत निकल के आ जाती है और वो कहती है इसने मेरे साथ ये किया था। हो सकता है किया भी हो लेकिन बहुत सारी औरतें जब कोई कोई ऐसा कोई टाइम आता है कोई इलेक्शन का टाइम है या कोई बहुत अहम टाइम आया तो उनको फिर याद आ जाता है कि अब हम यानी हमारे साथ कुछ मसला हुआ था। तो ये सख्त गुनाह है अगर किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया जाए। तो इस औरत ने देखें कहां से शुरू किया एक गुनाह का इरादा किया था ना और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इंसान एक गुनाह करता है और उससे गुनाह के दरवाजे खुल जाते हैं और इसने भी एक गुनाह का इरादा किया था मगर कैसे उसके बाद फिर जाहिर है अब झूठ भी बोलना पड़ा धोखा भी दिया अपने शौहर को खयानत भी की अपने शौहर की और तोहमत भी लगाई किसी की रेपुटेशन भी तबाह करने की कोशिश की बहुत सारे गुनाहों में पड़ गई बहुत सारे गुनाह। तो एक गुनाह कभी एक नहीं रहता शैतान एक ही कह के करवाता है कोई बात नहीं एक ही गुनाह है ना कोई बात नहीं एक ही बात है बार है ना मैंने कौन सा रोज रोज करना। अच्छा अब गलती हो जाए इंसान से तो होना क्या चाहिए इंसान को शर्मिंदा होना चाहिए और तौबा करनी चाहिए मगर यहां पे कोई तौबा की तो बात है ही नहीं उल्टा दूसरे पे इल्जाम। और यही आप उठा के देख लें इबलीस ने भी तो यही किया था। कहानी जहां से शुरू हुई इंसानियत की तो वो इसी से तो शुरू हुई कि इबलीस ने कहा था मेरी थोड़ी कोई गलती है अल्लाह तेरा कसूर है तूने क्यों मुझे सजदा करने का हुक्म दिया। तो इबलीसी रवैया यही होता है इबलीसी तरीका यही होता है कि इंसान अपनी गलती कभी नहीं मानता वो कहता है आपका ही कसूर है आपने मुझसे ये करवाया आपने ऐसा किया था तो ये हुआ था मेरा क्या कसूर। बहुत कभी अमल है इसने भी बजाय अपने ऊपर देखने के कि मैंने गलती की है उल्टा इल्जाम दूसरे पे। अब ये देखें ये कोई छोटी बात नहीं थी इसलिए कि किसी औरत कोई भी आम औरत भी कह दे ना कि कोई आदमी है उसने मेरे साथ ऐसे करने की कोशिश की मसलन ने मुझे रेप करने की कोशिश की तो ये बहुत बड़ी बात है। और कहां ये कि गुलाम अपनी मालकन पे हाथ डालता आपको पता है जाहिलियत में भी ऐसा नहीं होता था कभी गुलाम जुर्रत ही नहीं कर सकते थे वो इतने पिसे हुए होते थे इतने डाउन होते थे ना माशरे में कि वो कभी सोच ही नहीं सकते थे अपनी मालकन के ऊपर ऐसी बात करने का जाहिलियत में भी। और कभी नहीं आप कोई वाक्या ऐसा सुनेंगे या पूरी ये तारीख इस्लामी में भी कहीं मक्का में मदीना में कि गुलाम ने किसी ने ऐसा कर दिया गुलाम ने अपने आका को कत्ल कर दिया मालकन के साथ ऐसा आखिर इतने गुलाम थे कभी आपने सुना नहीं। गुलाम बेचारे उतने ऐसे उनको दिमागी तौर पे मफलूज कर दिया जाता था, वो कभी सोच ही नहीं सकते थे ऐसी बात। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, छोटी बात नहीं थी। काला, इस पे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने दिफा के लिए बोल पड़े, हिया रावदतनी अन नफसी, ये है जो फुसलाना चाहती थी, ये है जो मुझे सिड्यूस कर रही थी। और इसमें कोई हरज नहीं होता कि इंसान की इज्जत पे जब कोई इल्जाम आ रहा हो तो उसको मौका मिले और वो बोले, ये नहीं कि उस वक्त खामोश रहे, हम तो कुछ कहते नहीं, हम तो बस खामोश रहेंगे, नहीं, बोले उस वक्त। खास तौर पे इज्जत का जब जहां पे मामला हो और कैरेक्टर की बात आए, आगे आप देखेंगे जब वो बादशाह बन जाते हैं तो इनके भाई भी इल्जाम देते हैं लेकिन उस वक्त वो खामोश रहते हैं, मगर यहाँ पे खामोश नहीं रहे, वो बात ही अलग है। और शाहिद शाहिद मिन अहलिया, और एक गवाह देने वाले ने गवाही दी उसके अहल में से। अब बड़ी बड़ी मुश्किल सिचुएशन आ गई ना, इसलिए कि अब करें तो करें क्या, जाहिरी बात है उसको थोड़ी गैप का इल्म है कि भाई हुआ क्या था, वो किसकी बात पे यकीन करे, वो कह रहा है कि इसने किया, वो कह रही है कि इसने किया। तो अब अजीज मिस्र बड़ी कंफ्यूजन में आ गया, हो सकता है कोई मशवरा किया हो किसी से या कुछ है। तो एक गवाही देने वाले ने गवाही दी उसके घर में से, यानी उसने एक प्लान दिया, उसने एक मशवरा दिया, उसने एक बात को का सलूशन दिया। अच्छा, अब यहां पे देखें क्यों ऐसा नहीं हुआ कि अजीज मिस्र फौरन अपनी बीवी पे यकीन कर लेता और कहता कि तुम ही गलत होगे, तुम्हारी इतनी जरूरत, जैसे लोग होते हैं वो फौरन औरत की बात सुनी और फौरन गुस्से में आ गए और फौरन गालिए गलोच और हाथापाई शुरू कर दी, ऐसे क्यों नहीं किया? इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर तो उसके भी सामने था ना, जाहिर है यूसुफ अलैहिस्सलाम पले बड़े थे उस घर में, वो इतना तो जानता था कि ये कैसे इंसान है, इतना तो पता चल जाता है। तो अब उसने, इसलिए उसको इतनी कंफ्यूजन हुई कि ये मामला क्या है। तो एक गवाह ने क्या कहा, उसने कहा इनका ना कमीसुहु कुद्दा मिन कुबुलिन फसदकत, अगर कमीज फाड़ी गई है सामने से तो ये सच्ची है, सदकत है ना तासाकिन, औरत सच्ची है, यानी इसका मतलब है कि इस आदमी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया या उसको अप्रोच किया या उसकी तरफ बढ़ा, तो औरत जाहिर है रेजिस्ट कर रही थी तो सामने से कमीज फटेगी और उसको दूर कर रही है। वह हुआ मिनल के आदिबीन, और ये आदमी फिर झूठा है। कहा जाता है कि ये कौन था जिसने ये कहा, बाज तफसीरों में आता है कि एक बच्चा बोल पड़ा था, और उसमें हदीस भी है कि इब्ने अब्बास कहते हैं कि चार बच्चे पंगूड़े में बोले थे, उनमें एक तो जुरेद पे जो जिसने इल्जाम लगाया था उसका बच्चा था, आपने सुनी होगी ये बात, फिर एक फिरौन की जो हेयर ड्रेसर थी उसका बच्चा था या बच्ची थी जिसने कहा था कि माँ तू हक पे है और तू कूद जा इसमें, तो और एक ईसा अलैहिस्सलाम थे जो पंगूड़े में बोले थे, और चौथा बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये शाहिद था। तो बास कहते हैं कि नहीं, ये ज़ईफ हदीस है, ये सिर्फ इब्ने अब्बास का कॉल है, क्योंकि बुखारी की हदीस में तीन बच्चों के बोलने का ही सिर्फ जिक्र आया। तो दूसरी जगह तफासीर में है कि ये कोई रिश्तेदार था, हो सकता है इस औरत का कोई रिश्तेदार था जिसने ये बात कही, जो कोई समझदार था और उसने बड़ी इंसाफ की बात कही, इसलिए इसको शाहिद कहा गया। वो देखने वाला तो नहीं था, वो घोड़ा देख रहा था इसलिए कहा गया, अगर उसने एक इंसाफ की बात बताई, एक एक प्लान बताया, ठीक है। और उसने कहा वह इन काना कमीसु कुद्दा मिन दुबुरिन, और अगर कमीज फटी हुई है, फाड़ी गई है पिछली तरफ से, फकैदा बात, तो ये औरत झूठी है, वह हुआ मिना सादिकीन, और वो सच्चों में से जाहिर है, इसका मतलब है पीछे से तो नहीं, अब अगर औरत की तरफ अप्रोच ये कर रहा था तो पीछे से कैसे कमीज फट गई, फिर वो तो ये है कि ये भागा है तो पीछे से ऐसा हुआ। अब दरवाजे पे भी उसने देखा होगा कि सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तो यहां से हमें ये पता चला कि इस्लाम में भी ये जायज है कि आप किसी केस के लिए, किसी केस को सॉल्व करने के लिए उसके कराइन देखें, शवाहिद देखें कि क्या चीजें हैं जो, जैसे आज तक कल भी फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, डीएनए टेस्ट किए जाते हैं, इस तरह से चीजें ली जाती हैं, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है।